बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज
जय गोपीजन
जय
वल्लभ
गोपी जन वल्लभ
गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन,
यशोदनंदन व्रज
यशोदानंदन व्रज जनरंजन,
यशोदनंदन व्रज
यमुनातीरं भवनचारी,
जनरंजन
यमुनातीरं भवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद,
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा,
जय जगन्नाथ
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। कृष्ण कथा के इस उत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 49वें अध्याय में हम हैं और प्रसंग ये हो रहा था कि अक्रूर जी हस्तिनापुर पहुंच चुके हैं। कई महीनों तक वहां पर वो रहे ये देखने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करते हैं, क्या वो पक्षपात करते हैं या नहीं, कोई अन्याय करते हैं या नहीं पांडवों के प्रति। और उन्होंने सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कुंती महारानी अपने ने अपनी हृदय की बातें भी बता दी, विदुर जी ने भी बताया और अपने आंखों से भी धृतराष्ट्र का व्यवहार अक्रूर जी ने देख लिया। और जब लौटने का समय आया तो अक्रूर जी फिर से आए धृतराष्ट्र के सामने और श्री कृष्ण और श्री बलराम की ओर से उन्हें एक संदेश या उनका उपदेश देने लगे। तो कल की कथा के अंत में हमने ये कृष्ण बलराम की का जो संदेश है इसके बारे में कहना प्रारंभ किया था और अब इस कथा को आगे ले जाते हैं। तो हम 23वें अध्याय तक पहुंचे हैं, 23वें श्लोक तक पहुंचे हैं जहां पे अक्रूर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से कि केवल एक अपंडित है, अपंडित अर्थात जो पंडित नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है अर्थात जो मूर्ख है, केवल ऐसे ही एक अपंडित है जो अपने परिवार का भरण पोषण करता है अधर्म के, अधर्म से कमाए हुए धन से, और फिर ऐसे अज्ञानवश सोचता है कि ये सब मेरा है, ये धन मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। जनस्य मोहो यम अहम ममेति। परंतु अंत में क्या हो जाता है कि ये सारे चीजें, ये सारे उसके जो प्रिय व्यक्ति होते हैं, उसके प्यारे वस्तु होते हैं, सब उनको त्याग देते हैं, और फिर वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। इसलिए मृत्यु के समय केवल जो कृष्ण भक्त है, जो भली भांति जानता है कि वो अभी कृष्ण के पास ही जाने वाला है, और जितने भी लोग हैं वो निराश या हताश होकर प्राण छोड़ते हैं, क्योंकि उनको आसक्ति रहती है इस भौतिक जगत से, और इस जगत को छोड़ना नहीं चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ये बताया करते थे कि उनके एक मित्र थे जो डॉक्टर थे, जो एक व्यापारी थे, और जब उनके निधन का समय आया और वैद्य या डॉक्टर उनके पास आए थे, तो डॉक्टर से निवेदन कर रहे थे कि मेरी जीवन की अवधि थोड़ी बढ़ाइए, अब मृत्यु से मुझे बचाइए, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे काम और करने हैं, 2 साल और बस, 2 साल जब पूर्ण हो जाएंगे तो मैं तैयार हो जाऊंगा प्राण त्यागने के लिए, मुझे बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी हैं, मेरा परिवार है, मेरा व्यवसाय है, और बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनको मैं अपूर्ण छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए कृपया केवल 2 साल मुझे दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उनको 2 साल क्या, एक क्षण भी अधिक नहीं मिल सकता है, जो उसके भाग्य में लिखा है उतना ही समय उसे मिलेगा, एक क्षण कम नहीं, एक क्षण ज्यादा नहीं। तो इस तरह से हम जीवन को खींच लेना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, भले अन्य लोग हमारे प्रति कितना भी दुर्व्यवहार क्यों ना करें। तो ये है संसार की आसक्ति। तो अक्रूर जी अब कड़वा सत्य इस जगत का बतला रहे हैं धृतराष्ट्र को। हमारा सच्चा हितैषी वही होता है जो आवश्यकता पड़ने पर कड़वे सत्य का विवरण करना भूले नहीं। केवल ऐसा नहीं है कि जो हमारी बातों में हाँ मिलाएं वही हमारे सच्चे मित्र हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल मीठी बातें करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, परंतु जो आवश्यक बातें हैं, जो सत्य है, वो हमें नहीं सुनाते। तो फिर जो लोग केवल मीठी मीठी बातें करके सत्य नहीं बताते हैं हमें, वो हमारे शुभ चिंतक या हमारे सच्चे मित्र नहीं होते हैं, क्योंकि हम ऐसे हमारे विचार से विपरीत कोई बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो हमें कुछ कड़वी बात कह देते हैं। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो केवल अपने आप को ऐसे हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों से घेर के न रखे, ऐसे भी लोगों का संग करें जो कि उसे समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर सत्य बताएं। तो कभी जैसे एक चुटकुला मुझे याद आ रहा है जो मैं कभी कभी सुनाता हूं, एक व्यक्ति ऐसे हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति था। तो उसके उसका मालिक जो है, जहां पे वो कार्य करता था, उसका मालिक जो भी कहता था वो हाँ हाँ मिलाता था। और एक कर्मचारी ने उसका मजाक उड़ाया, और तुम केवल हाँ में हाँ मिलाते हो, जो भी हमारे मालिक कहते हैं वो सही हो या गलत हो तुम हाँ 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 कह देते हो, तो हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति तुम हो। उसने कहा नहीं, मैं ना में ना भी मिलाने वाला व्यक्ति हूं, जब मालिक ना कहता मैं भी ना कहता हूं। तो दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने विवेक शक्ति को त्याग कर केवल हाँ में हाँ हाँ में हाँ मिलाते जाता है लोगों से। और भक्ति में भी ऐसे देखा जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं, कहीं एक जगह जाते हैं प्रवचन सुनते हैं, कोई विशेष अलग अलग संप्रदायों से अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग दर्शन होते हैं, कोई निराकारवादी होते हैं, कोई मायावादी होते हैं, कोई देवता के उपासक होते हैं, कोई क्या तो कोई क्या, सब जगह जाके हाँ में हाँ मिला लेते हैं, और फिर कृष्ण भक्तों के साथ में आते हैं वहां भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो चाहते थे कि हमें एक स्थान में रहना चाहिए, वो सही स्थान, और उस स्थान को छोड़कर भी यहां वहां की बातें सुननी नहीं चाहिए। तो खैर, अब अक्रूर जी एक ऐसे शुभ चिंतक थे, अक्रूर धृतराष्ट्र के विदुर, संजय, व्यासदेव, गांधारी, ये भी सब प्रामाणिक शुभ चिंतक थे। तो खैर, आगे फिर 24वें श्लोक में अक्रूर जी कहते हैं, क्या हम श्लोक को देख सकते हैं?
स्वयं किल्बिषमादाय तैस्त्यक्तो नार्थको विदः असिद्धार्थो विशत्यन्धम् स्वधर्मा विमुखस्तमः।
तो अक्रूर जी कहते हैं, तय ही त्यक्त है, ऐसे जो उसके तथा कथित परिवार के सदस्य और शुभचिंतक होते हैं, तय ही ऐसे लोग त्यक्त है, उसको त्यागते हैं ऐसे व्यक्ति को, और वो व्यक्ति जब अकेला पड़ जाता है तो उसे शरीर छोड़ना पड़ता है एक ना एक दिन तो, और न अर्थ को विदह, उसे अपने अर्थ या अपने जीवन के उद्देश्य की जानकारी नहीं होती है, वो कोविद नहीं होता है। कोविद, कोविद अर्थात जो बहुत बुद्धिमान है, विद मतलब जानने वाला, कोविद मतलब जो बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो जो बहुत विद्वान लोग होते हैं, बड़े जानकार लोग होते हैं, उनको कोविद कहते हैं। ये कोविड नहीं, आजकल ये कोविड की बीमारी चल रही है ना, वो नहीं, ये कोविद है संस्कृत में। तो ये तो बीमारी कोविड की है, ये तो बस एक तरह की बीमारी है, बीमारियों का अंत नहीं होगा। भले हम तरह तरह के दवाइयां, वैक्सीन वगैरह ढूंढ रहे हैं, टीका लगा रहे हैं अपने आप को, ठीक है, भले हम कोविड बीमारी से बचे भी, लेकिन सच्चा कोविड जो होता है वो होता है जो कभी भी बीमार न पड़े, अर्थात ऐसे कोई व्यवस्था कर ले जिसके कारण उसे जन्म ही नहीं लेना पड़े। हम जन्म लेते हैं, एक भौतिक शरीर को स्वीकार करते हैं, इसलिए तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस चार प्रकार के दुखों का हमें अनुभव करना पड़ता है। खैर, न अर्थ कोविद, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता नहीं है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। असिद्धार्थ है, अपने जीवन के जो उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पाया, सिद्धार्थ नहीं है वो, असिद्धार्थ है। सिद्ध अर्थ है, अर्थ अर्थात उद्देश्य, सिद्ध मत सिद्ध मतलब पूर्ण। तो जिन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की है, तो जब ये शरीर छोड़ के जाता है क्या लेकर जाता है? स्वयं किल्बिषम आदाय, तो केवल अपने किए हुए जो पाप है किल्बिषम आदाय, वो साथ में लेकर जाता है।
तो मृत्यु के समय ऐसा जो व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण के शरण में नहीं आता है और जो केवल संसार में रह के तरह तरह के कर्म करता है, मृत्यु के समय वो केवल अपने पापों को साथ में ले जाता है जिनके लिए उसने इतना कुछ किया है, धन कमाया है पाप करके और तरह तरह से अन्यों की सेवा भी की है, तो ऐसे लोग उसको त्याग देते हैं, उनको साथ में वो नहीं ले जा पाता और हताश होकर बहुत दुखी अवस्था में अपने जीवन के उद्देश्य को न पहचान कर वो प्राण को त्यागता है और फिर कहाँ जाता है, विशति अंधम तमह। विशति अर्थात प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है, उस अंधे नरक में। विशति अंधम तमह, तमह देखिए अंतिम शब्द है श्लोक का, तो तीसरे पाद का अंतिम शब्द विशत्यंधम, तो वो ऐसे स्थान में प्रवेश करता है जो अंधकार है उसमें, और तमह तो ऐसे अज्ञान के अंधकार में या नारकीय अंधकार में वो प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि स्वधर्म विमुख है, क्योंकि उसने अपने स्वधर्म को त्याग दिया है, जाना नहीं है, तो सही धर्म को त्याग कर केवल संसार में उलझ कर व्यक्ति तरह तरह के कर्म करता है और फिर क्या होता है, ये दशा उसकी हो जाती है। तो स्वयं किल्बिषम आदाय, केवल अपने पापों को ही साथ में ले जाता है। तो हम सब ने बचपन से वाल्मीकि मुनि की कथा तो अवश्य सुनी है, जब नारद मुनि वाल्मीकि जी के पास आए थे जिनका नाम रत्नाकर था, रत्नाकर तो बड़ा डाकू था, बहुत पाप करता था, तो नारद मुनि जब पाप की बात बताई तो रत्नाकर को पता ही नहीं था कि पाप क्या चीज होती है। उसने पूछा कि तुम्हें पता नहीं कि ये पाप कितना होगा? नहीं। तो फिर नारद जी ने उनको समझाया कि कैसे हम जब पाप बुरे काम करते हैं तो हम बुरे कामों से जो हमने कुछ कमाया है वो यहीं पर रह जाता है और मृत्यु के समय हम साथ में क्या ले जाते हैं, हमारे पापों को साथ में ले जाते हैं और फिर आने वाले जन्मों में हमारे किए हुए पापों को हमें भुगतना पड़ता है, पापों का फल दुख के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने मृगारी को भी बतलाया था, जैसे कि चैतन्य चरितामृत में वर्णित है। तो मृगारी को भी पता नहीं था कि ये पाप क्या चीज होती है और फिर उन्होंने भेजा उनको वापस कि जाके अपने परिवार के सदस्यों से पूछो, जैसे कि उन्होंने वाल्मीकि को भी कहा था कि क्या वो आपके पाप में भागीदार होने के लिए तैयार हैं, और सबने मना कर दिया। तब उनको लगा कि अरे रे रे, मैं किसके लिए ये सब कर रहा हूं, बिना वजह क्यों मैं ऐसे पाप कर रहा हूं, और इसका असर क्या होगा, मुझे नारकीय अवस्था की प्राप्ति होगी आने वाले जन्मों में, इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी। तो इस संबंध में एक कहानी याद आती है, कहीं पहले भी मैं ये बता चुका हूं परंतु फिर भी क्योंकि संदर्भ इतना उपयुक्त है इसलिए वो कहानी मैं पुनः आप सबको सुनाना चाहता हूं संक्षेप में, कि बहुत प्राचीन काल की बात है, एक राजा हुआ करता था। तो राजा की चार रानियां थीं और तो अपने रानियों के साथ में वो रहते थे, परंतु ऐसे हुआ एक दिन कि उन्हें ऐसा रोग हो गया जिसके लिए वैद्यों के पास कोई उपाय नहीं था। तो वैद्यों ने कह दिया राजा को कि हे राजन, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अभी मृत्यु का सामना आपको करना ही पड़ेगा, थोड़े ही समय में आपकी मृत्यु होने वाली है। तो राजा को बहुत दुख हुआ, तो राजा ने सोचा कि ठीक है, मैं अकेले तो मृत्यु के बाद लंबी यात्रा में नहीं जाना चाहता हूँ, तो कम से कम मेरे रानियों को मैं पूछ लेता हूँ कि शायद मेरी रानियाँ जो हैं वो मेरे साथ चलें, तो मृत्यु के बाद जो मेरी गति होगी वो बहुत सुखमय हो जाएगी, क्योंकि मैं पत्नी के साथ में रहूँगा। तो बड़ी आशाओं को अपने हृदय में रख के वो राजा अपनी पहले पत्नी के पास गए। अब वो पहली पत्नी ऐसी थी जिनसे राजा बहुत ज्यादा आसक्त थे, और इस पत्नी को बहुत कुछ दिया था राजा ने, अच्छे अच्छे कपड़े, आभूषण, बहुत सुंदर ऐश्वर्यशाली रहने की व्यवस्था करके रखी थी, और बहुत ज्यादा समय वो इस रानी के साथ बिताते थे, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन भी खिलाए। हाँ, बहुत कुछ किया उस रानी के लिए। जब उस रानी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हे रानी, देखिए अब मुझे इस देह को त्यागने का समय आया है, तो क्या आप मेरे साथ चलोगी? तो यद्यपि राजा ने रानी के लिए इतना कुछ किया था, इतना ख्याल रखा था और इतनी सुविधाएं दिए थी उस रानी के लिए, लेकिन रानी ने एक शब्द में नकार दिया। उसने कहा नहीं, और वहां से उठ के चली गई एक शब्द में बस। तो राजा को ऐसे लगा कि कोई वज्रपात हो गया है सर के ऊपर। अरे, इस रानी के लिए मैंने इतना कुछ कर दिया, और देखो आज जब आवश्यकता की समय पड़ी है, आपातकालीन स्थिति में जब मैं बहुत एक दीन अवस्था, हीन अवस्था में हूं, तो ये मेरे साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कह रही है ना, कह के एक शब्द बस उस स्थान से उठ के चली गई। तो राजा को बहुत दुख हुआ। तो राजा ने सोचा कि चलो दूसरे रानी के पास जाता हूं, अवश्य वो मेरा साथ देगी, वो इस प्रकार से मुझे ठुकराएगी नहीं। तो ये दूसरे रानी को भी कभी ख्याल रखते थे राजा, परंतु विशेष करके राजा जब बाहर जाते थे ना, तो उनको साथ में ले जाते थे दिखाने के लिए कि देखो मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, उसके पास कितने अच्छे वस्त्र हैं इत्यादि। और जब ऐसे दिखाते थे बाहर, तो इस प्रकार से समाज में उनका बड़ा नाम हो गया, देखो इनकी पत्नी कैसी है। तो इस तरह से राजा इस पत्नी से भी बहुत आसक्त थे। तो राजा ने रानी से कहा कि देखो अब संसार छोड़ के जाने का समय मेरा हो गया है, तो क्या आप मेरे साथ में आओगी? तो रानी ने क्या उत्तर दिया? रानी ने कहा नहीं, और जैसे ही आपकी मृत्यु होगी मैं किसी दूसरे से व्यक्ति से विवाह कर लूंगी। पहले ही जो है, पहले रानी के उत्तर से ऐसे वज्रपात के समान प्रहार जो है एक असर हुआ था उस राजा के ऊपर। और जब दूसरे रानी ने ऐसे कह दिया, केवल इतना नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगी, इतना ही कह दिया कि जैसे ही आपकी मृत्यु होगी मैं दूसरे व्यक्ति से विवाह भी कर लूंगी, तो राजा के लिए ये बात असहनीय हो गई।